इस गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै
Yeah.
हन्त ओ अयम यह अद्री पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गो गणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सूयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है हे सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौवों बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवसत दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस प्रकार यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फ़ोन लाए हो, कृपया उसको आप बंद कर दीजिए ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, और माताओं से अनुरोध है कि छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान दें ताकि उनका आवाज़ या शोर ना हो।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। यहाँ हम रामायण से चर्चा कर रहे हैं। भरत अयोध्या लौटने के पश्चात जब कैकेयी से भेंट करते हैं और जब सारे समाचार सुनने के पश्चात भरत जो अब अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कि क्यों मुझे एक ऐसी माँ प्राप्त हुई, क्यों मैं कारण बना इस इतने बड़े कहर को जो अयोध्या के ऊपर ढाया उनकी माँ ने, उसका उसके पश्चात वो सबसे पहले कौशल्या माता से मिलने जाते हैं और यहाँ से श्रृंखला प्रारंभ होती है जहाँ अब भरत जो हैं वो गलत फहमी का शिकार बनते हैं। तो अब तक तो अयोध्या वासियों ने भरत को कुछ कहा नहीं, बल्कि अयोध्या वासियों के व्यवहार से थोड़ा बहुत अंदाज़ा भरत लगा लिए कि मेरे ऊपर ये सब का दोषारोपण हो रहा है। परंतु वचनों से सबसे पहले माता कौशल्या ने भरत से कहा कि अब क्या चाहिए मुझसे, जो कुछ मेरा था, जो मेरी प्राणवायु थी उसे तो हर लिया तुमने और तुम्हारी माँ ने, अब और क्या चाहिए, जीते जी मुझे मार डाला। और जो षड्यंत्र तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर रचा वो षड्यंत्र तुम्हारा तो पूरा हुआ, अब क्यों आए हो यहां पर, बस इतनी मेहरबानी कर देते कि राम के साथ मुझे भी वनवास दिला देते, या कम से कम अभी तो मुझे जहां पर राम गए हुए हैं वहां मुझे भिजवा दो ताकि अंतिम संस्कार तुम्हारे पिता हमारे महाराज दशरथ का हम कर सकें। तो यहां से जो शुरुआत हुई, भरत सात लोगों ने भरत के ऊपर दोषारोपण किया या गलत फहमी के शिकार इन सात लोगों के द्वारा। तो पिछली बार हमने ये जो मुद्दा लिया था, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग रेसिपी फॉर रुइनिंग रिलेशनशिप्स, और हमने रामायण से ही प्रसंग लिया वाली और सुग्रीव कि इन दोनों में जो गलत फहमी पैदा हुई, एक जमाने में ये दोनों भाई ऐसे घनिष्ठ, इनके अंदर न केवल मित्रता बल्कि भ्रातृता, परंतु एक गलत फहमी के वजह से कट्टर शत्रु बने वाली और सुग्रीव, और प्रभु श्री राम के इंटरवेंशन के वजह से इन दोनों में अंततः सुलह हुई। तो हैप्पी एंडिंग इनका हुआ। अब आज जो हम शिक्षा लेंगे ये है कि जब माता कौशल्या के मुख से भरत ने ऐसे वचन सुने और ऐसे कटु वचन सुने, तो भरत वो जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एफर्मेशंस लेने लगे, और उन्होंने माता कौशल्या से कहा कि आप मेरे ऊपर ये जो दोषारोपण कर रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं। और वो किस प्रकार से उसको स्वीकार कर रहे थे? वो कह रहे थे कि यदि मैंने निम्नलिखित किसी भी प्रकार का पाप किया हो, और एक एक कर वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 पापों की लिस्ट सामने प्रस्तुत करते हैं माता कौशल्या के, कि यदि इन पापों में से किसी एक पाप को भी मैंने किया होगा तो आप अवश्य मुझे ये दंड दीजिए। और कौन सा दंड? ये जो वाग्बाण छोड़ रहे हैं आप, उसका दंड। तो यहां भरत जो हैं इनका अप्रोच जानना बहुत महत्वपूर्ण है, उनका रिस्पॉन्स, उनकी प्रतिक्रिया। जब हम गलत फहमी के शिकार बनते हैं और बिना कारण जब हमारे ऊपर कोई दोषारोपण करता है तो उस समय प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे यहां पर आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब भरत जब अब वो डायरेक्ट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वो भी एक प्रकार से राजकुमार हैं, तो उनकी भी कुछ अपेक्षाएं थी, या हम कह सकते हैं यदि हम उनके जगह पर होते तो हमारी कुछ अपेक्षाएं होती कि कोई हमारे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। सबसे पहले क्या प्रूव हुआ है कि मैं इस षड्यंत्र में शामिल था? भरत ने वो रोड नहीं लिया, वो रास्ता नहीं लिया अपने आप को प्रूव करने का, डिफेंड करने का, एक्सेप्ट किया। आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बिफोर बिल्डिंग एक्सपेक्टेशंस। परंतु उनका जो ये एक्सेप्टेंस का तरीका इतना सिविलाइज्ड, उसके अंदर कोई सार्कैज़म नहीं था, उसके अंदर कोई व्यंग या टॉन्ट नहीं था। बहुत बार जब हमारे ऊपर कोई दोषारोपण करता है हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं परंतु बहुत टॉन्ट भरे शब्दों के द्वारा, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये कितना जेन्युइन है उसको एक्सेप्ट करने में। तो यहां पर ये जो नेगेटिव एफर्मेशंस इन्होंने लिए कि मैंने यदि निम्नलिखित इन पापों को कभी एक दफा भी अपने मन में भी किया हो, इन पापों की यदि मैंने कभी कल्पना भी की हो, तो हां मैं स्वीकार करता हूं कि जो आप बोल रहे हो मैं उतना गिरा हुआ इंसान हूं। तो इसकी श्रृंखला पूरी तो लिस्ट हम सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु चार कैटेगरीज भरत वो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए कि इन इन लोगों का स्तर देखिए कि ऐसे बहुत कठिन परिस्थिति में भी, ऐसे माहौल में और ऐसे वार्तालाप में भी इनको सही क्या है, गलत क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कौन सी श्रेणी का पाप किस में आता है, वो सब याद है। अक्सर सबसे पहली चीज हम भूलते हैं जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहली चीज हम क्या भूलते हैं, फिलॉसफी। जितना सुना फिलॉसफी शास्त्र ये सब कुछ तत्व ज्ञान, वो स्टार्ट लिविंग आर एग्जिस्टेंस व्हेन वी स्टार्ट फाइटिंग विद समवन। और फिर जो सबसे स्ट्रांग संस्कार, अगर उसको संस्कार बोले, वो बाहर आ जाते हैं फिर। परंतु यहां पर उल्टा, विकट परिस्थिति में, ऐसे ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन में शास्त्र की पकड़ कभी ढीली नहीं होती। तो सबसे पहला पाप, फोर सिंस ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी, भरत शुरू करते हैं, सिंस ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन अकाउंटेबल लीडर, sins of irresponsibility for a representative of dharma, for a social member who benefits from the society around him or her, responsibility for a respectable householder। तो अब भरत ये जो चार श्रेणियां बताए कि कोई राजा या नेता जब वो गैर जिम्मेदार होता है तो कौन कौन से पापों को करता है, जो धर्मज्ञ है या धर्मी है, धर्म का पालन करने वाला, वो दावा देता है कि मैं धर्मज्ञ हूं या धर्माधिकारी हूं, जब वो गैर जिम्मेदार होता है तो कौन कौन से पापों को करता है, जब कोई सामाजिक प्राणी है जिसका उत्तरदायित्व एक सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या क्या होना चाहिए, जब उसमें वो गैर जिम्मेदारी दिखाता है तो उसके कौन कौन से पाप हैं, और फिर अंततः एक गृहस्थ जब वो गैर जिम्मेदार हो जाता है तो उसके कौन कौन से पाप वो कर बैठता है। तो एक एक कर हम लेंगे। तो सबसे पहली श्रेणी में गैर जिम्मेदार नेता या राजा, तो सबसे पहला पाप ऐसा गैर जिम्मेदार राजा क्या करता है, कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम सिटीजन्स विदाउट इंश्योरिंग प्रोटेक्शन। कर लेते रहो लेते रहो लेते रहो और प्रजा को कोई सुरक्षा न देना। जैसे महाभारत में, महाभारत की एक लोक कथा ये प्रचलित है कि अंत में महाभारत ये सब कुछ हो गया, युधिष्ठिर महाराज अब वो राजा बन गए, तो हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज रोज नागरिकों से मिलते थे। एक समय होता था जब वो नागरिकों से मिलते थे, प्रजा से मिलते थे। तो एक दफा वो अपनी पूजा में थे तो उन्होंने भीम अर्जुन इनको खड़ा किया कि जो भी कोई आएंगे अपनी समस्या लेकर तो नोट डाउन कर लेना और उनकी समस्या का समाधान उनको सुना देना। तो वो लोग खड़े हैं प्रतीक्षा में, युधिष्ठिर महाराज उस समय उपलब्ध नहीं है, तो एक एक कर अपनी समस्या लेकर आते हैं। तो एक व्यक्ति लेकर आता है अपनी समस्या, कहता है, ये सब पहलियों के रूप में समस्या प्रस्तुत की जाती है। तो पहला व्यक्ति कहता है कि मैंने एक अजूबा देखा, अजूबा ऐसा देखा कि जिस खेत को दीवारें वो सुरक्षित रखने के लिए खड़ी की गई थी, वही दीवारें उन खेतों को खा रही। और भी लोग आकर अपने अपने पहेलियां सामने रखे, समस्याएं सामने रखे, हम केवल ये पहली वाली ले। तो उन्हें समझ में नहीं आया ये कैसे संभव है। खेत की दीवारें खेत को कैसे खा सकती हैं? उन्हें समझ में नहीं आया. क्यों? क्योंकि कलयुग शुरू नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया कि इस पहेली को कैसे बुझाएं. तो जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा तो वो समझ गए कि ये आने वाले कलयुग का एक प्रमुख लक्षण रहेगा कि जो रक्षक हैं वो भक्षक बनेंगे. जिनको प्रजा नियुक्त कर राजा बनाएगी वही प्रजा को खाएंगे. उनका ही कर लेकर उनको बेकार बनाएंगे. इसके पश्चात ये दूसरा पाप. अब ये सब लिस्ट याद रखिएगा, भरत कौशल्या के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. नॉट लीडिंग वन्स आर्मी पर्सनली टू फाइट दी एनिमीज, कि वो राजा जो कि क्षत्रिय होने के नाते उसे अपनी सेना का प्रमुख होते हुए सेना के सामने युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहिए, जब वो कायर बनकर केवल सेना को आगे भेजता है तो वो गैर जिम्मेदार होते हुए ये पाप करता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मानो भरत त्रेता युग में भविष्यवाणी कर दिए. कौन सी भविष्यवाणी कर दी? यूजिंग वंस लीडरशिप पोजिशन टू बेनिफिट वंस ओन ब्लड फैमिली एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजन्स वेलफेयर. क्या कहें इसके विषय में? एक बार एक शेर और शेरनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक वन से दूसरे वन जा रहे थे. तो बच्चे छोटे छोटे थे, कंट्रोल में नहीं रह पा रहे थे. तो उसमें से एक बच्चा, अब किसका बच्चा है ये? शेर और शेरनी का बच्चा है. इसमें से एक बच्चा वो यहां वहां घूमते हुए खो गया. और बहुत समय पश्चात शेर और शेरनी को पता चला कि एक बच्चा उनका खो गया है. बहुत प्रयास किया ढूंढने का, वो बच्चा नहीं मिला. और बहुत सालों पश्चात जब वो शेरनी फिर से उसी रास्ते वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि वही उसका बच्चा अब बड़ा हो चुका है परंतु भेड़ों के बीच में है. हुआ क्या था? वो पथभ्रष्ट हुआ, खो गया और भेड़ों के बीच में वो बड़ा हुआ. उसकी परवरिश कहां हुई? भेड़ों के बीच में. तो भेड़ों की तरह आवाज करते हुए, शरीर शेर का है परंतु हरकतें भेड़ की तरह, आवाज भेड़ की तरह, खा क्या रहा है? पत्ते घास, भेड़ की तरह. तो जब शेरनी ने देखा कि अरे ये तो मेरा ही बच्चा, ये भेड़ बन गया है, तो शेरनी अब इस भेड़ को जाकर कहती है कि पहचाना अपनी मां को? ये देख रहा है, अजीब नजरों से देख रहा है कि कौन है ये और ये क्या बोल रही है मुझे. तो समझाने की कोशिश करी, नहीं समझ में आया. आवाज निकल रही थी भेड़ की तरह, चिंघाड़ भी नहीं रहा था, बड़ा भरकम शरीर है शेर की तरह परंतु आवाज भेड़ की तरह निकल रही है. तो कैसे कन्विंस कराए अब अपने इस बच्चे को कि ये भेड़ नहीं है? तो ले गई और कहां ले गई? एक कुएं के पास, जहां पर अंदर कुएं में जल था, और प्रतिबिंब दिखाया. देख मेरा प्रतिबिंब, देख और तेरा प्रतिबिंब देख, एक जैसे दिखते हैं हम दोनों. अब विश्वास हुआ कि तू शेर का बच्चा है तू भेड़ का बच्चा नहीं है। और वो कौन सा दिन था? मई 27, 2014, भारत। तो उस समय जो भेड़ बना हुआ, शेर जो भेड़ बना हुआ, उसे समझ में आया कि हम भारतवासी जो हैं वो वास्तविक रूप में शेर हैं। और उसके पश्चात वो एक शेर जब वापस जाता है, अन्य भेड़ों को देखता है, तो उनको धीरे धीरे बताना शुरू करता है, क्योंकि वो भी भेड़ नहीं थे, वो भी शेर थे। और धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद सारे भेड़ों को कुएं के तट पर लाता है और उनको दिखाता है 23 मई 2019। अब फिर सब चिंघाड़ने लगते हैं कि 70 साल बाद अब समझ में आया है कि हम भेड़ का जीवन जी रहे थे। अच्छा, ये तो कुछ नहीं, आज सबके चेहरे कमल के तरह खिलते हुए दिख रहे हैं, पता नहीं ये हाल ही में मुझे कल हमारे गोविंद प्रभु ने वीडियो फॉरवर्ड किया, बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो है। ये महिला अमेरिकन सिटीजन जिनका नाम है तुलसी गबार्ड, आप थोड़े अचंभे में चले गए होंगे कि ये तुलसी कैसे नाम है। तो ये एक हरे कृष्णा डिवोटी है और नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो केवल नरों के इंद्र नहीं, नारियों के भी इंद्र बन रहे हैं। तो ये एक वीडियो जहां पर इनका इंटरव्यू लिया गया और इस इंटरव्यू में उनको साफ साफ पूछा गया अमेरिका में कि आप जो इतने धड़ल्ले से अपने आप को हरे कृष्णा बोलते हो और हिंदू बोलते हो और आप यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए अप्लाई किए हो, तो क्या ये आपके ऊपर कम्युनल या फिर रिलीजियस होने का आरोप नहीं लगेगा? तो देखने लायक ये छोटा सा वीडियो है।
You were talking about your faith, your Hindu faith, and we have a question from the audience about that. Joseph Ramirez, an audio and visual technician from right here in Austin.
Hi, Tulsi. I wanted to ask, what has your Hindu faith brought into your life? And also, how do you respond to being attacked for being in support of Hindu nationalists?
You know, I grew to understand from a young age, being raised in a multi-faith home. My mom's a practicing Hindu, my dad's Catholic. And so for us as kids, we grew up studying and reading from both the Bhagavad Gita as well as the New Testament. So we heard stories about Krishna and Arjuna at night when we were going to sleep, as well as stories about Jesus of Nazareth. But what we learned from a young age from these scriptures was that real happiness in life can only be found when you're dedicating your life in the service of God and in the service of others. Truly finding ways, no matter what path we chose in life, to make a positive impact on those around us and to be good stewards of our home, to take care of this planet. So throughout my life, I have done my best in different ways to be able to do that, to dedicate my actions, whether it was environmental work in Hawaii as a teenager, running for state house in Hawaii when I was 21 years old, served on the city council, and then, of course, now in Congress, as well as serving as a soldier in the Army National Guard. I want to address the second part of your question, though. Accusations like the type you mentioned are just another form of Hindu-phobic attacks that, unfortunately, I and so many others, Hindus in this country, have been on the receiving end of, along with Muslims, along with people of other religions. And it is exactly these kinds of attacks that not only Hindus must stand up and speak out against, but every single one of us, no matter where the attack is coming from or who it is being targeted to. If we want to change this culture of hate and bigotry, every one of us must stand up and speak with one voice to condemn it, because an attack on one of us is an attack on all of us.
Thank you, President.
Congresswoman, I want to ask you a little bit more about this, because you made a video celebrating the life of the founder of Hare Krishna, who you called your grandfather and spiritual master. You were raised as part of a movement that split off from Hare Krishna. For those who aren't familiar with this tradition, can you describe your faith as it relates to the Hare Krishna movement?
I follow a branch of Hinduism that is the Gaudiya Vaishnava branch of Hinduism. And the teachings and the practice that I live in my everyday life and that are taught by not only my teachers, but their teachers and their teachers and their teachers before them, is essentially what I talked about. It is this practice of what's called bhakti yoga and karma yoga. Bhakti yoga is developing a loving relationship with God. It's a very deeply personal relationship. And karma yoga is seeing how can I dedicate my energy and skills and time into the service of others. And there are so many ways we can do that. I was talking with someone last night, a young person who was saying, well, I don't know that I want to get into politics or the military, but I know that I want to be of service with my life. And this practice of karma yoga, people are familiar with the term karma. Term means action. So the actions that we take, this means using those actions in a way that is of service and has a positive impact on those around us, whether we work in business or education or healthcare or anything, any of these principles that are universal principles, not limited to Hinduism, can be applied in every one of our lives.
Hari Bol. तो ऐसा लग रहा है कि सत्युग का आगमन फिर से होता जा रहा है यहाँ पर. तो भरत आगे कहते हैं कि ये तो हुआ पहले श्रेणी, जो गैर जिम्मेदार कोई नेता या राजा जो पाप में लग सकता है, फिर वो जो गैर जिम्मेदार कोई धर्मज्ञ है. तो इसके विषय में वो कहते हैं कि इसके पाप की श्रेणियां, श्रृंखला, लिस्ट ये है. नॉट कीपिंग वंस वर्ड ऑफ ऑनर, ईटिंग फूड विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग इट टू द लॉर्ड एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग ट्वाइलाइट आवर्स, disrespecting teachers and elderly family members, mechanical study of scriptures, living a selfish life without benefiting or contributing for others' welfare. तो जैसे महाभारत में ही राजा मयूरध्वज की कहानी है. ये जब महाभारत का युद्ध हो गया और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ किए और उस समय अर्जुन को भगवान एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते थे कि जो दानवीरता की पराकाष्ठा जिन्होंने दिखाई, ये राजा मयूरध्वज. तो जो अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व, जब उसे अर्जुन लेकर अलग अलग प्रांतों में जा रहे थे और अर्जुन उनके अंदर थोड़ा बहुत अभिमान हो गया था कि अब हम लोग
सम्राट बने हुए हैं तो कौन विरोध करेगा इस अश्वमेध यज्ञ का। तो नियम ये है कि जो राजा यदि विरोध करता है विपक्ष में हो जाता है, विरोध करता है तो वो उस अश्व को, उस घोड़े को वो बंदी बना लेगा और फिर उसके साथ लड़ाई, राजा के साथ लड़ाई, और फिर जो जीतेगा वो राजा बनेगा। तो सभी अर्जुन अश्व को लेकर जा रहे हैं तो सभी अपने हाथ जोड़कर अपनी सहमति दे दिए कि हाँ भाई युधिष्ठिर जो हैं वही हमारे सम्राट रहेंगे। परंतु रतनपुर नामक राज्य में जब अर्जुन इस अश्व को लेकर पहुंचे तो वहां के राजा मयूरध्वज और उनका 18 साल का बेटा ताम्रध्वज, तो ताम्रध्वज 18 साल का केवल, उसने चुनौती दी अर्जुन को। और अर्जुन पहले तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि ये छोटा सा बच्चा है, ये बचकानी बातें कर रहा है और अपने कद से ज्यादा कुछ बोल रहा है, तो मजाक में ले लिया अर्जुन ने पहले। परंतु ताम्रध्वज वो मजाक नहीं कर रहा था। और फिर उन दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ जिसमें ताम्रध्वज ने अर्जुन को मूर्छित गिरा दिया और अश्व को अपने राज्य में ले गया। और अर्जुन आश्चर्यचकित कि कैसे हुआ। और जैसे ही मूर्छित अवस्था से अर्जुन की आंखें खुली तो सामने श्याम सुंदर कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखे, क्योंकि ये उनकी योजना थी, वो अर्जुन को मिलाना चाहते थे इस परिवार से, न केवल ताम्रध्वज, न केवल मयूरध्वज, उनके पूरे परिवार से मिलाना चाहते थे। और ये एक ऐसी कहानी है कि जो रोंगटे खड़े कर देती है, हृदय स्पर्शी द्रवित करने वाली कहानी है ये। तो फिर अर्जुन वो पूछने लगते हैं कि कौन है ये, ये कौन सा परिवार है, ये कौन सा राज्य है, कौन सा राजा है, कभी मैंने सुना नहीं, और ये 18 साल का इनका बेटा ये मुझे हरा दिया। तो भगवान कहते हैं ठीक है, सही मायने में यदि जानना है कि ये कौन है हमें भेष बदल कर जाना होगा। तो दोनों ब्राह्मण का भेष लेते हैं और यमराज को बुलाते हैं भगवान, और यमराज को सिंह बनाते हैं, अपने साथ ले चलते हैं। तीनों मयूरध्वज राजा के राज्य में पहुंचते हैं, स्वागत किया जाता है, दो ब्राह्मण आए हैं और उनके साथ एक सिंह। अजीब दृश्य था ये। तो यहां जब पूछा गया कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, जब राजा मयूरध्वज ने पूछा तो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में हैं कहते हैं कि हम तो कंदमूल खाते हैं परंतु ये सिंह बहुत समय से भूखा है, ये हमारा साथीदार है और इसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, और आप तो जानते हैं कि मांसाहारी होते हैं ये प्राणी, परंतु ये विशेष सिंह हैं जो आपके पुत्र ताम्रध्वज का मांस खाना चाहता है। सोचिए इस प्रकार की भिक्षा, और वो भी किसी राजा से, उसके इकलौते बेटे का मांस किसके लिए, सिंह के लिए। और ये कौन है दोनों ब्राह्मण, अभी तक महाराज मयूरध्वज के लिए अनजान, अनजान ब्राह्मण है ये लोग। और इसके ऊपर शर्त ये रखी, तुरंत मयूरध्वज राजा तुरंत एग्री हो गए, ऐसा भी नहीं कि जाके सब, हम लोग अगर कोई होते तो सबसे पहले दफा हो यहां से, वो रेडी हो गए। और यहां पर एक और शर्त भगवान कृष्ण ने रखी। तो सबसे पहले जब ये सब बताया नहीं था अर्जुन को, अर्जुन वहां पर सुन रहे हैं, बोले अरे ये कौन सा टेस्ट है, ये कौन सी परीक्षा है, अरे उसने मुझे हराया, वो मुझसे अच्छा युद्ध उसका कौशल है, परंतु इस प्रकार का दंड उसको देना ताम्रध्वज को। लेकिन दूसरी शर्त भगवान रख रहे हैं कि आपका जो बेटा ताम्रध्वज है उसका आधा भाग उसका आधा भाग इस सिंह को खाना है और उसको उसके शरीर का आधा भाग उसकी मां करेगी, काटेगी। अब कल्पना कीजिए, एक मां अपने बेटे को जीते जी आधे में काटे और वो भिक्षा के रूप में इनको दे, और वो भी किसको? एक सिंह को, एक प्राणी को। अरे राजा है, कहीं से भी मांस उपलब्ध करा कर दे सकता है किसी और प्राणी का, मनुष्य का, और वो भी मेरे पुत्र का, और वो भी मेरी पत्नी, उसकी मां, उसको काटना है। अच्छा ये नहीं, इसके ऊपर एक और शर्त भगवान रखते हैं कि काटते समय यदि इनकी जो मां है, ताम्रध्वज की मां, यदि वो आंखों से आंसू गिरे तो वो स्वीकार नहीं होगा, वो दान स्वीकार नहीं होगा। आंखों से आंसू भी नहीं गिरने चाहिए। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में इनको छोड़ा। अर्जुन वहां पर वापस मूर्छित होकर गिरने वाले थे, सब सुनते हुए कि भाई नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, ये बहुत महान परिवार होगा, ये सब मत कराइए आप, क्या करा रहे हैं आप। परंतु अब वचन दे दिया है, वचन दे दिया है, तो फिर बुलाया गया ताम्रध्वज, बुलाया गया ताम्रध्वज को, और इनकी पत्नी, इनका नाम था विद्याधरणी, उनको बुलाया, और विद्याधरणी के हाथ वो तलवार, उनके हाथ में छत्राणी थी तो तलवार को उठा पाती थी, वो तलवार हाथ में दी और काटना शुरू किया। अर्जुन भगवान की ओर देख रहे हैं, आप सच में ये करा रहे हैं, क्यों मेरे लिए? भगवान शांत होने के लिए कहते हैं अर्जुन को, तब तक रोका नहीं, पूरा काट दिया आधा। मां ने अपने बेटे को पूरा आधा काट दिया, एक आंसू की बूंद नहीं गिरी। हक्का बक्का रह गए सब लोग, और आधा भाग काटने के पश्चात जो दाहिना भाग था उस सिंह को दिया खाने के लिए, और जब वो सिंह खा रहा था तब ये रोने लगी, परंतु एक ही आंख से आंसू गिरने लगे। ऐसा कभी आपने देखा है, जब कोई रो रहा है तो एक ही आंख से आंसू गिर रहे हैं? ये रानी विद्याधरणी, इनकी एक आंख से आंसू गिर रहे। तो भगवान ने, नहीं देखो रो दी तुम, तो फिर कारण बताया रोने का, और कौन सी आंख से आंसू गिर रहा था? बाई बाई आंख से आंसू गिर रहा था। तो वो बोली कि मैंने जब मेरे बेटे का बाया भाग कटा हुआ नीचे गिरा हुआ देखा तो मेरे आंखों से, बाई आंखों से आंसू गिरे कि ये भाग क्यों नहीं काम आया किसी के, केवल ये दायां भाग क्यों काम आया, पूरा शरीर उसका क्यों नहीं काम आया, इसलिए वो आंसू गिर रहे थे। तब फिर भगवान अर्जुन के मुख की ओर मुख किए और अर्जुन पूर्ण रूप से समझ गए कि थोड़ा बहुत अभिमान जो उनके अंदर आ गया था वो भगवान उसको, इसलिए भगवान ये कभी सहन नहीं कर सकते अभिमान किसी के अंदर, और इतने एक्सट्रीम तक चले जाते हैं वो इतने से अभिमान को चूर चूर करने के लिए। और फिर वहां पर तो यमराज जी थे जो सिंह के रूप में आए थे, तो पुनः ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, और फिर पता चला इनको कि ये दोनों कौन थे और ये सिंह कौन। तो ये कथा मेंशन्ड है यहाँ पर, जो पहला पाप जो भरत कह रहे हैं, Not keeping one's word of honor, eating food without first offering it to Lord. इंद्रदुम्न महाराज वो बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद शुरुआत के दिनों में अपने हाथों से, प्रभुपाद ही सब कुछ बनाते थे, किसी को तो कुछ आता नहीं था, भोग बनाना, शाकाहारी ये सब कुछ बनाना किसी को नहीं आता था, तो प्रभुपाद ही सब कुछ बना के खिलाते थे अपने शिष्यों को। और उस समय तो ये हिप्पी थे, वो शिष्य की कैटेगरी में भी नहीं पहुंचे थे ये लोग। तो प्रभुपाद ने एक दिन समोसे बनाए। अब इन्होंने जिंदगी में कभी समोसा शब्द नहीं सुना, देखा नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने समोसे बनाए और समोसे बनाकर ऑफर किया। ऑफर करने के पश्चात प्रभुपाद ने पहला निवाला लिया उस समोसे का और सबको दिया, और आंख बंद कर प्रभुपाद बोले, आई हैव नेवर टेस्टेड अ समोसा मोर डिलिशियस देन दिस। तो अभी हमको लग रहा होगा कि भाई हम ही बनाओ और हम ही उसका गुणगान करो, बाकी भी उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये रेसिपी आप कहां से सीखे? तो प्रभुपाद की आंखें बंद, अभी तक समोसा वो खाए हैं, आंखें बंद हैं, खा रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है समोसा। और प्रभुपाद ने कह दिया, दिस इज द रेसिपी ऑफ मदर यशोदा। सब लोग साइलेंट हो गए सुन के, दिस इज द रेसिपी ऑफ मदर यशोदा। उसके बाद किसी ने प्रभुपाद को नहीं पूछा और डिटेल्स कि कहीं उसका एक कतरा भी यहां वहां वेस्ट नहीं हो जाए, कि माता यशोदा की रेसिपी है वो। तो हम तो केवल सुन सकते हैं अब ऐसे समोसे के विषय में। तो ये सारे जो बाकी के पाप बताए, जिसके अंदर लिविंग अ सेल्फिश लाइफ विदाउट बेनिफिटिंग और कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर अदर्स वेलफेयर, जैसे कि ग्रंथ यहां पर बताया, मैकेनिकल स्टडी। तो ग्रंथ जो हैं, इनको ये जो नाम दिया गया है वैदिक ग्रंथ, ये इसलिए ताकि हमारी ग्रंथि कटे। यदि ग्रंथ हम मैकेनिकल रूप से पढ़ेंगे तो हमारे जीवन की ग्रंथियां वैसी की वैसी रहेंगी। तो सही रूप से ग्रंथों को पढ़ने का परिणाम क्या होना चाहिए, हमारे बद्ध अवस्था की जो ग्रंथियां हैं वो कटनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी कहता है या धर्मज्ञ कहता है परंतु वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपनी ओर से, समाज में उसका कोई योगदान नहीं है, तो उदाहरण भरत देते हैं, जैसे कि किसी गोदाम में अनाज पड़ा पड़ा सड़ जाता है, या कोई मीठे जल का कुआं है परंतु उसको किसी ने बंद कर दिया है, किसी कृपण व्यक्ति ने उसको बंद कर दिया है ताकि कोई और उससे पानी न ले, बंद करने के वजह से वो मीठा जल उस कुएं का जो है वो पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। तो जैसे अनाज के गोदाम में अनाज सड़ने लगता है, मीठा जल किसी कुएं का बंद होने के वजह से सड़ने लगता है, उसी प्रकार से वो धर्मी, वो धर्मज्ञ जब अपना जीवन दूसरों के योगदान के लिए नहीं बिताता तो उसका जीवन भी सड़ने लगता है। और ये अपने आप में पाप है। तो भरत कह रहे हैं कि यदि मैंने कोई ऐसा पाप किया हो तो मैं ये दोष, षड्यंत्र का दोष अपने ऊपर लेता हूं। सिंस ऑफ एन इरेस्पॉन्सिबल सोशल मेंबर, ट्रीटिंग द अंडरप्रिविलेज्ड एंड बेगर्स एज अनवांटेड पैरासाइट्स, कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स बाय वन्स वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस, पोल्यूटिंग वाटर, एयर एंड एनवायरमेंट बाय वन्स लाइफस्टाइल, नॉट डूइंग एनीथिंग टू प्रोटेक्ट ओल्ड पीपल, वुमेन, काउज, चिल्ड्रन एंड ब्राह्मणास। जैसे प्रभुपाद ने जब देखा मायापुर में कुछ बच्चे जो वहाँ के जिस अर्चिन्स बोलते हैं, झोपड़पट्टी के कुछ बच्चे, वो लोग कचरे कूड़ेदान में से, खाली पत्तल में से खिचड़ी चाट चाट कर खा रहे थे। तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आए और तुरंत प्रभुपाद ने 10 किलोमीटर रेडियस पर फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम वहां से शुरू हुआ। कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स बाय वन्स वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शंस। प्रभुपाद अंत समय अपने गुरु बंधुओं को बुलाए और प्रभुपाद ने उन सब से क्षमा मांगी कि यदि इस्कॉन इस्टैब्लिश करने के दौरान मेरी तरफ से यदि कोई भूल चूक हुई हो, मेरी तरफ से कुछ अपशब्द यदि निकले हों तुम लोगों के लिए, तो मैं जाते जाते क्षमा मांगना चाहूँगा। नॉट डूइंग एनीथिंग टू प्रोटेक्ट ओल्ड पीपल, विमेन, चिल्ड्रन। तो प्रभुपाद अक्सर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये सीख देना चाहते थे कि कैसे वहाँ पर, बहुत बार वहाँ पर जो देखा जाता है, अभी तो भारत में भी देखा जाता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको घर निकाला देकर ओल्ड एज होम। श्रील प्रभुपाद एक प्रोग्राम इंडिया में कर रहे थे और प्रभुपाद की जो लेडी डिसाइपल्स थे वो लोग सब यंग, अब अमेरिकन लेडीज, दिखने में इतने सुंदर, वो लोग सब कीर्तन कर रहे हैं, प्रभुपाद गा रहे हैं। तो कुछ ऐसे गिरे हुए कुछ भारतीय पुरुष वो छेड़खानी करने के लिए इन प्रभुपाद के लेडी डिसाइपल्स के पास निकट जाने लगे और प्रभुपाद ने मंच से देखा। और ये सच्ची घटना है। प्रभुपाद क्या किए, करताल बजा रहे थे और प्रभुपाद हर समय बड़ी करताल बजाते थे, तो करताल बजाते बजाते प्रभुपाद मंच से नीचे उतरे, करताल को घुमा रहे हैं सुदर्शन चक्र की तरह और जोर जोर से घुमा रहे हैं, और जो उनकी लेडी डिसाइपल्स और ये छेड़खानी करने वाले जो पुरुष निकट आ रहे थे उनके बीच में, उनके चेहरे के सामने कीर्तन करते हुए घुमा रहे हैं, और यदि वो एक कदम भी थोड़ा इधर उधर करते तो वो पूरा बड़ा करताल घूमता हुआ उनके सर पर पड़ने वाला था। तो वो समझ गए कि ये साधु जो हैं ये अलग ही श्रेणी की हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रांग लेक्चर दिया, इसी के ऊपर लेक्चर दिया, वो लेक्चर भी मैंने सुना, हाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर इन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दीज फाइव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, काउज, ब्राह्मणास, विमेन, चिल्ड्रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके पश्चात अंत में भरत कहते हैं, सिंस ऑफ एन इरिस्पॉन्सिबल हाउस होल्डर, फर्स्ट सिन हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आजकल तो इसको लीगलाइज कर दिया है, हाँ, वो भी इंडिया में, कि ये कोई पाप नहीं है। तो टोटली रामायण के अगेंस्ट इसको लीगलाइज कर दिया आजकल। निग्लेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ अ चेस्ट वाइफ टू हैव अ चाइल्ड। यूके में एक कपल्स की कैटेगरी है जिनको कहते हैं डिंक, वो डिंक के लड्डू नहीं, DINK। तो बहुत से मैरिड कपल्स वो बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने आप को इस कैटेगरी में जो डाले हैं। तो डिंक का फुल फॉर्म क्या है, डबल इनकम नो किड्स, DINK, डबल इनकम नो किड्स। तो ये मतलब इनकम दोनों काम कर रहे हैं और दोनों काम कर कर पैसा, खूब पैसा कमाओ, लेकिन कोई संतान उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, वो झमेले में कोई पड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे और फिर इनके ऊपर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इनकी सरपच्ची नहीं होगी तुम्हारे अंदर, सरदर्द नहीं होगा तुम्हारे अंदर। इसलिए जैसे भारत में बोला जाता है कि भाई हम दो हमारे दो पहले थे अब एक, हम दो हमारे एक, वहाँ पर बोला जाता है अरे ज़्यादा पैदा करो क्योंकि उधर उनकी आबादी कम होते जा रही, कम होते जा रही है। Neglecting and abusing one's old parents. हमने वो एक स्टोरी सुनी होगी, एक परिवार में बूढ़ा पिता, उसको वो पार्किंसंस डिजीज जिसमें हाथ कांपते हैं, तो अक्सर हाथ से प्लेट गिर जाती थी और वो चीनी मिट्टी की जो प्लेटें होती हैं तो प्लेटें गिर कर टूट जाती थी। तो बेटे ने क्या किया, अपने पिता के लिए लोहे की थाली ले आए कि आप हमारी प्लेटें बर्बाद कर रहे हो तो लोहे की थाली में खाओ। तो रोज लोहे की थाली में पिताजी को खिलाता। तो फिर हुआ क्या कि पिताजी जब गुजर गए तो ये बेटा, इसका बेटा, वो लोहे की थाली को तिजोरी में रखने गया। तो ये पूछ रहा है तू ये क्या कर रहा है, मतलब पिताजी आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो जरूरत पड़ेगा ना आपको देने के लिए, तो इसलिए संभाल के रख रहा हूं। तो यहां पर भरत कह रहे हैं ये यदि पाप मैंने किया, अर्निंग मनी थ्रू चीटिंग एंड इलीगल मीन्स। तो अब देखिए अक्सर जब कोई इस प्रकार के पाप में लगा रहता है कि अपनी आमदनी वो पापकृत्य कर्मों के द्वारा अर्जित कर रहा है, तो फिर उसके परिवार में उसकी जो उसका जो संबंध, ये जो फर्स्ट पाप है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लास्ट, वो दोनों का कोरिलेशन है। व्हेन पीपल अर्न मनी थ्रू चीटिंग दे स्टार्ट चीटिंग ऑन देयर फैमिली मेंबर्स इवेंचुअली। दे स्टार्ट इफ द हस्बैंड is earning money through illegal and cheating means, eventually he starts cheating on his wife. That's bound to happen. ये उसका flip side, उसका reaction. तो इसलिए प्रकृति के कुछ कड़वे नियम हैं। अब इनका निष्कर्ष जो भरत कह रहे हैं कौशल्या से, उसका निष्कर्ष आपके सामने इन कुछ स्लाइडों में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि खेत में बीज न डाले जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। इसका अर्थ क्या है कि जब हमारे जीवन में हम एक संस्कारी जीवन नहीं जिएंगे, वो बीज नहीं डालेंगे, यदि हम सकारात्मक विचारों को और संस्कारी विचारों को हमारे जीवन में नहीं डालेंगे तो अपने आप कलयुग की जो वर्षा है उसके वजह से जो अवांछित पौधे हैं, वीड्स या घास फूस, वो उगना अनिवार्य है। इफ यू डोंट कल्टीवेट एंड सो द सीड्स ऑफ प्यूरिटी ऑफ कल्चर, definitely in this Kaliyuga, instead of fields, instead of agricultural fields, it will be simply unwanted weeds which will grow. वर्षा का आना एवं फसल का उगना श्रद्धा एवं मेहनत का समन्वय है। तो यहां दो चीजें हैं, एक है कि हमारी मेहनत और उस मेहनत के साथ भगवान पर विश्वास। तो फिर से रामायण में उदाहरण दिया गया है इसी का, खेती का उदाहरण दिया गया कि ये दोनों आवश्यक है कि किसान कितनी भी मेहनत करे, वर्षा ही नहीं हो तो उसकी मेहनत किस काम की, और यदि वो कहे कि बस वर्षा ही होनी चाहिए, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों का समन्वय जरूरी है जीवन में, भगवान पर अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत। जीवन में जो कुछ मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं। अब इसकी ये एक उदाहरण रामायण में भोजन का दिया गया है, और आयुर्वेद जो हम इतने पढ़े हैं, और आयुर्वेद नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम जानते हैं कि जब भी कोई किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गया है परंतु एक भी दिन यदि उसका अपचन हुआ, कुछ खाया हुआ उसका अपचन हो गया, रह गया, तो उसके वजह से जो उसकी तकलीफें शुरू होती हैं वो लंबी लिस्ट है। परंतु यहां पर हम इस सिद्धांत को लेकर कुछ और सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि जीवन में, यहां पर तो भोजन के अपचन के विषय में बताया गया है कि जब भोजन वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है पेट के अंदर, परंतु जीवन के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो अपचन का कार्य हमारे जीवन में करती है और उसके दुष्परिणाम क्या है। तो सबसे पहले पैसा, पैसा न पचने पर क्या बढ़ता है, कौन सा रोग बढ़ता है, दिखावे का रोग बढ़ता है। किसी ने बहुत पैसे कमा लिए, पैसे कमाने के पश्चात उसको पचाने की शक्ति नहीं है, अर्थात सही जगह पर उन पैसों को इस्तेमाल करने की बुद्धि नहीं है। जैसे बंबई में मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर में था तो ऐसे बहुत से केसेस होते, क्योंकि शादी के मौसम में, शादी का जो सीजन, उसमें साउथ बॉम्बे में बहुत आलीशान शादियां होती थी, तो ऐसी आलीशान शादियों के पश्चात वो जो लड़की का पिता या लड़के के पिता के पास रैंसम कॉल आता था। रैंसम कॉल मतलब फिरौती, फिरौती चाहिए, यदि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं खर्चा करने के लिए। एक शादी रेसकोर्स में हुई, एक दिन शादी का, एक दिन उनका खर्चा एक दिन का था 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए एक दिन शादी का, और एक हफ्ते बाद डिवोर्स हो गया। कहां गए 30 करोड़? नाली में। तो क्यों? क्योंकि दिखावा, उस पैसों का दिखावा। जब उसका पचन नहीं हुआ तो किस रोग में वो बाहर आया? दिखावे के रोग में बाहर आया। बात न पचने पर चुगली बढ़ती है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं और बातें शुरू होती है, और कौन सी बातें, गॉसिप किसे कहते हैं, प्रजल्प या गॉसिप किसे कहते हैं, कि यदि मैं किसी के साथ गॉसिप कर रहा हूं, न तो उस व्यक्ति को उससे कोई लेना देना है, न मुझे जिसके विषय में मैं गॉसिप कर रहा हूं मुझे कुछ लेना देना है, न मैं जिसके विषय में गॉसिप कर रहा हूं उसका कुछ भला होने वाला है। तीन चीजें, इसको कहते हैं गॉसिप, इसको कहते हैं प्रजल्प। तो इसका जब अपचन होता है तो चुगली, चुगली बढ़ती है। प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वासुदेव, जिसको कुष्ठ रोग हुआ था, चैतन्य महाप्रभु उसको सुडौल शरीर वाला सुंदर बना देते हैं अपने आलिंगन से, तो वासुदेव अपने अब सुंदर शरीर को प्राप्त करने के पश्चात ज्यादा चिंतित, और वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं अब जो मुझे प्रशंसा मिलेगी उस प्रशंसा को मैं कैसे पचाऊंगा, वो बहुत मेरे लिए कठिन हो जाएगा उस प्रशंसा को पचाना। तो जब भी कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसके साथ साथ चूर्ण रखो उसको पचाने का, और कौन सा चूर्ण, विनम्रता का चूर्ण, डिस्क्लेमर कि ये मेरे लिए नहीं है। निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। जब कोई हमारी निंदा करता है, अक्सर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, जब भी हमारी कोई निंदा करता है तो तुरंत हम रिटेलिएट करने जाते हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी औकात क्या है, मेरे बारे में तू बोल रहा है। तो हुआ क्या कि जब निंदा हुई और फिर उसका प्रतिशोध किया, उसके पश्चात वो और ज्यादा भड़केगा, यहां पर और भड़का भड़की चलेगी। उसके बाद फिर होता क्या है, एक और विश्व युद्ध। राज न पचने पर खतरा बढ़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। जब हमें किसी चीज को राज रखने के लिए कहा गया है, परंतु ये जिह्वा जो है वो बंद नहीं होती, चुप नहीं होती है, और फिर हम लोग बोलते कहते हैं, मैं तुझे बता रहा हूं, किसी को बोलना मत, क्योंकि मुझसे किसी ने प्रॉमिस लिया है, तो इसलिए किसी को बोलना मत। और वो 10 लोगों को यही बोल के कि मुझसे प्रॉमिस लिया है, तुम किसी को बोलना मत, और सब बैठे हुए हैं उस पूरे राज को जाने हुए, और सब सोचते हैं किसी को नहीं पता है। दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है। पाश्चात्य देश में देखा गया है कि जो मायूस डिप्रेस्ड वो लोग जाते हैं मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट के पास, और साइकेट्रिस्ट के पास जाकर, क्योंकि इतना वो लोग दूसरों का दुख सुन लेते हैं, इतना डाउनलोड उनके अंदर हो जाता है दूसरों का दुख, कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि इतना दुख सुन लिया तो अफेक्ट हो जाता है। फिर उनको दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए कि भाई मैं इतना मायूस और निराश हो गया हूँ, मैं हताश हो गया हूँ, मुझे जीने की कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, तुम बताओ क्या करूं। सुख न पचने पर कृतज्ञता बढ़ती है, इन ग्रैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, कि किसी के जीवन में बहुत सुख आ गया लेकिन उसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसको लेकर, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसको लगेगा कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं इस सुख का, मेरी लायकी है इस सुख की। और फिर शुरुआत में जब वो सुख नहीं मिलता, वो समृद्धि नहीं मिलती, वो ऐश्वर्य नहीं मिलता, तो मरता क्या ना करता, विनम्र रहता है, ग्रेटफुल रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसको उसकी समृद्धि, उसका सुख, उसका ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, वो जब पचता नहीं, जब पचता नहीं, तो उसके अंदर इनग्रैटिट्यूड, फिर मेरे वजह से सब कुछ हुआ, असनम में वसनम में जाया में बंधुवर्गो में इति कूर्वाणाम कालवृको हन्ति पुरुषजम, जैसे बकरी मे करती है, और जैसे बकरी जितना ज्यादा जोर जोर से मे करती है तो उसको खाने के लिए जो सियार तैयार रहता है। इसके पश्चात कहा गया है, यश न पचने पर बदनामी बढ़ती है। कोई बहुत यशस्वी हो गया परंतु उसको पचा नहीं पा रहा है, तो फिर एक न एक दिन वो इतना ऊंचा, माया देवी जो उसको ले जाती है इतने ऊपर से, फिर जब नीचे गिराती है तो वो बदनामी, फिर वो व्यक्ति पचा नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता। और अंत में भगवत कृपा न पचने पर जन्म मृत्यु का चक्र बनता रहता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण कैलाश, कैलाश की स्टोरी प्रभुपाद सुनाए, हम उसकी नाटिका भी किए थे, कि भगवत कृपा एक बार नहीं, दो बार नहीं, नारद मुनि के रूप में अनगिनत बार इस कैलाश के जीवन में भगवत कृपा भगवान ने भेजी, परंतु जिसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, भगवान के कृपा को जब टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो वो होता है अपचन, भगवत कृपा का अपचन। और भगवत कृपा का अपचन के वजह से फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यहां पर भरत कौशल्या को ये पूरी लंबी लिस्ट दे रहे हैं कि माते, यदि मैंने इनमें से कोई एक भी पाप अपनी कल्पना में भी किया हो तो हां मैं जिम्मेदार हूं, आपके हमारे प्रभु श्री राम के वनवास का। परंतु इसके पश्चात उन्होंने फिर भी दोष अपने ऊपर स्वीकार किया। तो ये जो टॉपिक है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेशंस, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले रविवार को, क्योंकि यहां भरत ने जो एफर्मेशंस दिए, नेगेटिव एफर्मेशंस दिए कि मैंने इनमें से कोई भी पाप नहीं किया है, और उसके पश्चात फिर वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये जो क्वालिटी भरत की है, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि रामायण के टीकाकार कहते हैं कि कहीं पूरी रामायण में कोई भी शख्स या किसी की भी शख्सियत वो ये दर्शाती नहीं, और ये है भरत के चरित्र का अमृत। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।